आमना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा अदीब या लिखारी बनने के लिए किन बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है और आपका रुझान लिखने की तरफ कैसे हुआ?
यह सिलसिला ये है कि अच्छा अदीब इंसान खुद कभी नहीं बन सकता, ये अल्लाह की अता है, और अगर आप में ये फन मौजूद है तो फिर ये खुद ब खुद इंसान को एक गैबी ताकत समझ लीजिए कि गाइड करती जाती है। फिर एक जिस चीज को हम आम जबान में कहते हैं ना कि आपका एक टेस्ट खास किस्म की किताबों का अगर जब बन जाता है, एक खास किस्म का अदब पढ़ने का, तो खुद ब खुद फिर जाहिर है आपका अंदाज़े तहरीर उसी तरह का होता चला जाता है और आप उसी तरह लिखते जाते हैं। यानी मेरे नज़दीक अगर अपने फन को निखारना है तो उसके लिए आपको खुद माँ की अच्छी किताबें, पुराने अदीबों की, पुराने तो नहीं मैं कहती, मैं ये कहती हूँ कि हमसे पहले जो गुजर गए उन लोगों की अच्छी तहरीरें, तमाम तहरीरें अच्छी हैं, उनको दिल लगा के शौक से पढ़ा जाए, उनको समझा जाए, तो उससे खुद बहुत फन में निखार आता है।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब एक राइटर कोई स्टोरी लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो कहानी की बुनत में किन अवामिल का ख्याल रखना जो है वो जरूरी है?
कहानी की बुनत जो है ये हर आदमी का, हर अदीब का, हर एक का अपना अंदाज होता है, लेकिन मैं जो जाती तौर पे जिस चीज को समझती हूँ कि जो होना चाहिए, या मैं किसी की भी चीज पढ़ते हुए जो मेरे जहन में एक फनी महासन होते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद आता है, अगर आप लोकेल को ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करेंगे, जो आप जिस माहौल की कहानी लिख रहे हैं उसके मुतालिक आपका मुशाहिदा मजबूत होगा तो किरदार उसमें मजबूत बैठेंगे। तो मुशाहिदा भी एक चीज है जो कहानी बुनते हुए लोकेल को डिस्क्राइब करना, मंजर निगारी को डिस्क्राइब करना, फिर उसके बाद किरदार साजी पे तवज्जो देना और मुकालमा, क्योंकि मैं जाहिर है ड्रामा राइटर भी हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मंजर निगारी और बयानी की जबान मुकालमे से जब फर्क होती है तो खुद बखुद आपकी कहानी में एक निखार पैदा हो जाता है।
आपने बिल्कुल अभी बात की मुशाहिदे की और हमें एक बहुत ही गहरा मुशाहिदा नजर आया जो अभी आपका ड्रामा चल रहा था उल्लू बराए फरोख नहीं, जिसने कामयाबी के बहुत झंडे गाड़े हैं। तो ये बताइएगा कि ये कहानी बहुत ही मुख्तलिफ और अछूती थी और ड्रामों की हालिया तारीख में पंजाब की देही जिंदगी और ये जो पेचीदा खानदानी सियासत है उसकी ऐसी भरपूर अक्कासी हमने नहीं देखी। तो एक तो ये बताएं कि आपको इस मौजू पर, क्योंकि ये कतरे मुश्किल मौजू है, इस पर लिखने का ख्याल कैसे आया और इतनी गिरफ्त कैसे रही आपकी अपनी किरदारों पे?
मदीहा, ये मेरा क्योंकि खुद भी ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और कुछ मेरी बड़ी करीबी लोग जिनसे मेरा बड़ा वास्ता दिन रात का रहा, मेरी स्कूल की सहेलियां कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली और उनसे जरा बड़ी खवातीन, उनकी फुपियां, उनकी खालाएं, तो ये एक अमूमी चीज थी, एक चीज मेरे सराउंडिंग में, मेरे चारों तरफ ये एक अमूमी चीज थी। तो मेरे लिए ये चीज, मुझे बचपन से बहुत चीज मुझे ये जहन में मेरे चुभती आई थी कि उन्हीं घरों में, दूसरे शहर में भाई की जिंदगी तो बड़ी खुशहाल गुजर रही है, भाभी भाई और उसकी फैमिली की, और उसी शहर में जरा आगे को जाके तो आपको कुछ उजड़ी हुई खवातीन नजर आती हैं जिनकी जायदाद पे वो भाई और भाभी ऐश कर रहे हैं, और उनके कोई ऐसी रीजन नहीं मुझे समझ में आती थी कि इनके ऊपर जिंदगी की ये खुशी बैन क्यों कर दी गई कि उनकी औलाद हो, उनका शौहर हो, उनका घर हो और वो अपना पैसा अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। ये चीज आज से मेरे जहन में नहीं थी। ये मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे जब से मैंने शायद लिखना शुरू किया है तो शायद हमेशा ये कैरेक्टर जो थे ये मुझे कहते रहे कि हमारे बारे में लिखो, हमारे बारे में लिखो। और आपकी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आजकल के ड्रामों के ट्रेंड से बिल्कुल एक हटके चीज थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश जब बहुत मजबूत होती है तो उसके लिए मुझे कई दफा खुद भी हैरत होती है कि प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, चैनल, सारे लोग इस लाइन पे आ कैसे गए। तो शायद वो सिंक्रोनिसिटी के तहत वो जो एक इज्तमाई लाशऊर होता है, तो वो हम सबके लाशऊर में भी शायद ये ख्वाहिश पल रही थी कि हम इस मौजू पे लिखें और इस मौजू को बनाएं, और काम करने वालों ने भी जिसमें काम किया तो यूं लगता है कि जैसे उन सबकी दिली ख्वाहिश थी ये काम करना।
बिल्कुल, और बहुत मशहूर हुआ ये ड्रामा, तो आपको लगता था कि लोग इसको इतनी पजीराई देंगे?
ये तो मुझे पजीराई के लिए तो कभी मैंने लिखा भी नहीं और मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये तो बात आपकी सही है कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बल्कि मुझसे जब ये लिया गया है तो कुछ लोगों ने जो बड़े मार्केट को, जो एक लफ्ज वो बोलते हैं कि हम मार्केट को हमने स्टडी किया और हमें पता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम आज वर्डिक्ट देते हैं कि ये चलेगा नहीं, इसकी कोई रेटिंग नहीं आएगी, इसको लोग नहीं देखेंगे।
अच्छा।
तो लेकिन प्रोड्यूसर्स वगैरह सब ने जब बनाया और जो इसका, जो उनको इसका फीडबैक सामने आया वो उन लोगों के लिए भी हैरान कुन
है। तो क्या आपको लगता है कि अब ड्रामा मार्केट जो है वो कुछ नए तजुर्बात के लिए तैयार है पाकिस्तान में?
मुझे नहीं लगता मेरा, क्योंकि अभी मैं तकरीबन सारे ही चैनल्स के साथ काम कर रही हूँ और सारे ही प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सब के साथ काम करने को हर शख्स तैयार है, हर शख्स समझता है कि ओरिजिनल काम क्या है और आर्ट क्या है और हमें किस तरह से उस आर्ट को एंटरटेनमेंट में मर्ज करके बनाना है। लेकिन एक जमाने में आमिर का जबर था और आज हमारे प्राइवेट चैनल्स का जबर है। प्राइवेट चैनल्स में उनको जाहिर सी बात है कि उनको जो उनके फाइनेंसर हैं, जो उनको इश्तहार देते हैं, उनको वो डिक्टेट करते हैं कि इस तरह के ड्रामों की रेटिंग आ रही है तो आप ये बनाएं। तो वो लोग एक आधी चीज तो बना लेंगे, जैसे कि ये बनाया गया तो मुझसे दोबारा किसी ने ये नहीं कहा कि हमें आप किसी टाइप का स्क्रिप्ट दें। बल्कि अगर मेरे से कभी कोई कांटेक्ट करता भी है तो वो मुझे ये कहता है कि खुदा रा उस तरह का स्क्रिप्ट मत दीजिएगा, वो बहुत अच्छा था। तो ये हमारे ड्रामों का ट्रेंड तो फिलहाल चेंज होने वाला नहीं है।
तो रेटिंग की इस दौर में एक राइटर की जो जो अपना फन है, जो उसके ख्यालात हैं, जिस तरह वो चीजों को लिख सकता है, वो किस हद तक उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी कहानी पे?
बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे लकीली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। मुझे जो भी मेरे साथ जिन लोगों ने भी काम किया, मैंने 8-9 ड्रामे अभी तक लिखे टेलीविजन के लिए, लेकिन उसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। मेरे साथ सिर्फ हुआ ये कि मुझे उस तरह का वो काम बना नहीं सके। और उसकी रीजन ये है, वो लोग क्यों नहीं बनाते, उसकी रीजन ये है कि अवेलेबिलिटीज नहीं है, बजट बहुत हाई हो जाते हैं, अच्छे अदाकार नहीं है, गेटअप्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, तरबियत की कमी होती चली जा रही है और फनकार जो हैं वो भी कम हैं, अच्छे लिखने वाले। एक मैं आपको मार्केट की बात जो बन रही है मार्केट ऐसे, उसकी रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ खालिस अदब लिखने वाले या इस तरह की जो चीजें होती हैं जो जरा मौजू से हटके होती हैं, वो लिखने वाले भी तो बहुत कम होते जा रहे हैं। हमारी पूरी जनरेशन में अगर आप उठा के देख लें तो मेरा ख्याल है कि जो बड़े अदीबों के प्लॉट, बानो कुदसिया वगैरह, तारर साहब, इन लोगों के बाद यूनुस जावेद साहब, दूर दूर तक आपको जो जो लोग इस वक्त 50s, 40s में, 30s में फॉल कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं अपने जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, उनमें आपको उस कैलिबर का कोई अदीब भी नजर नहीं आएगा। तो इसलिए उन लोगों को शायद उतना कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ता हो। और मार्केट के बनने की रीजन भी है, लोगों का टेस्ट बनने की रीजन भी है कि उनके सामने चीज ही यही आ रही है। आप GMO फूड और लोगों को ऑफर करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग खालिस खुराक खाने से चले गए। खालिस खुराक वो हासिल कहाँ से करेंगे? उसूल मुश्किल होता जा रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज के बाद टेस्ट डेवलप होता चला जा रहा है। सेम केस हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी है।
तो आपको लग रहा है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो खुद मिजाज एक बना रही है लोगों का, और लोगों को इस बारे में कहना कि वो ये देखना चाहते हैं, कहीं गलत तो नहीं है ये?
ये बिल्कुल गलत है, ये मदीहा बिल्कुल 100% गलत है। पाकिस्तान के अवाम का टेस्ट निहायत आला है। आप बाहर निकल जाएं, आपको ट्रक के पीछे इतना खूबसूरत, चाहे वो गलत हिज्जों में लिखा होगा, वजन से गिरा होगा, लेकिन कोई ना कोई फड़कता हुआ शेर आपको नजर आ जाएगा। कुल्फी की रेड़ी देख लीजिए किस कदर खूबसूरत बनी हुई होती है, गन्ने के रस की रेड़ियां, उनके ऊपर क्या क्या शेर लिखे हुए होते हैं। मैंने गधा गाड़ी को देखा, उसके ऊपर इतने खूबसूरत, उस गालिब का शेर था, बेशक वो गलत हिज्जों से लिखा हुआ था लेकिन वो लिखा हुआ था। अवाम का टेस्ट बहुत आला है। आप देखिए PTV के दौर में कितने बाकायदा फलसफे ट्रीट किए जाते थे ड्रामों पे, और लोग देखते थे, हर तरह के लोग देखते थे। हमारा टेस्ट बहुत आला है। अवाम के ऊपर ये इल्जाम है कि अवाम नहीं समझते, अवाम सब कुछ समझते हैं। मसला ये है कि हमारे पास लिखने वाले नहीं रहे। मार्केट तो बन गई, जब एक आपके पास इंडस्ट्री आती है उसके लिए आप स्किल्ड वर्कर्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तैयार कर लेते हैं, आप MBAs क्रिएट कर सकते हैं, आप CAs बना सकते हैं, क्रिएट तो नहीं यानी आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आप राइटर बना नहीं सकते। राइटर खुदा बना के भेजते हैं और खास किस्म के एक हालात होते हैं जिनमें वो बनते हैं। हमारे यहाँ जो एक तकरीबन 11 साल का एक बड़ा इंटेलेक्चुअल दबाव रहा, उस दबाव की वजह से हमारे यहाँ अदीबों की जो एक नई लॉट थी वो तैयार नहीं हो पाई। मैं ये पोस्ट इस्लामाइजेशन दौर की बात करूँ, इस्लामाइजेशन को बुरी शय नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से उसको दबाया गया ना, उसने इस्लामिक थॉट्स को भी दबा दिया गया, जो हमारी सूफी थॉट्स और थॉट्स थी। तो जब आप उस चीज को दबा देंगे तो एक खला पैदा हो जाएगा। अब हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें एक खला का दौर है। इस वक्त हमारे पास अदीब हैं ही नहीं, और जब अदीब हैं ही नहीं तो जो अवेलेबल लोग हैं उनसे जो कुछ लिखवाया जा रहा है वो हमारे ऊपर ठूंसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यही अवाम का मिजाज है।
पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में ड्रामों के राइटर्स का, जैसा कि आपने खुद भी कहा, एक नया रुझान देखने को सामने आया है। इसमें अक्सरियत जो हमें दिखाई देती है वो है जो डाइजेस्टर में खवातीन लिखती हैं। تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے لکھنے کا فن اب صرف ڈائجسٹوں میں لکھنے والوں تک محدود ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے؟
نہیں, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. سلسلہ یہ ہے کہ ٹی وی چینلز, فرض کیجیے اس وقت اگر ہمارے پاس 6 ٹی وی چینلز چل رہے ہیں, 24 گھنٹے نشریات دے رہے ہیں, ان کو شام کو 3 سے 4 پلیز دینے ہوتے ہیں, ایک آدھا سوپ دینا ہوتا ہے, ایک پرائم ٹائم کا پلے دینا ہے, 2 اس کے بعد دینے ہیں, تو اس سب کے لیے بتائیے کہ ادیب کہاں سے آئیں گے. ڈائجسٹوں کا یہ ہوتا ہے کہ ڈائجسٹ چونکہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیے اچھے فن پارے اور اچھی چیز جو ہے وہ دیر سے آتی ہے. صدیوں میں ایک آدھ تو بڑا ادیب پیدا ہوتا ہے, اور وہ بھی جو چیزیں پروڈیوس کرے گا وہ چند ایک ہی, بہت بہت کم ایسے ادیب ہیں کہ جن کے 30-40 فن پارے موجود ہوں. لوگوں کی ایک ایک چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اب سلسلہ یہ کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ کا پیٹ بھرنے کے لیے ٹرین سٹف کہاں سے آتا ہے؟ اسکولوں کالجوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں 12ویں جماعت تک, اور اس میں کسی بھی جگہ اسکرپٹ رائٹنگ نہیں پڑھائی جاتی. جو ڈائجسٹوں میں لکھنے والی خواتین ہیں ان کو ہر ماہ لکھ کے بھیجنا پڑتا ہے, ایک ڈائجسٹ تقریباً 280 سے 300 صفحات کا ہوتا ہے, اور اس کے بیچ میں اچھے خاصے پیجز الاٹ ہو جاتے ہیں خواتین لکھنے والیوں کو, اور اس میں ان کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کوئی آفاقی چیز لکھیں یا آپ کے بہت اچھی تھاٹس ہوں تو آپ اس میں لکھیں. آپ نے اگر اپنے روز مرہ کے واقعات, سبزی والے نے آپ کو تنگ کیا, آپ نے وہ بھی بات لکھنی ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتی ہیں. اب یہ جو ایک چیز تھی اس کی وجہ سے وہ ان میں سٹیمنا بھی ہے لکھنے والیوں میں, اور وہ اتنا لکھ کے دے بھی سکتی ہیں. ویئر ایز دوسری طرف آ جاتا ہے ادب. ادب جو ہے وہ, اس کے لیے آپ دیکھیے ادبی مجلے ہیں ہی کتنے,
درست,
چند ایک ہیں, تماہی ہے تو وہ سال میں ایک پرنٹ ہوتا ہے. اب اتنی انرجی جب آپ پیدا ہی نہیں کر رہے ادیبوں میں کہ وہ ہر ماہ بیٹھ کے لکھیں اور اتنا کچھ لکھیں, تو وہ ڈرامہ رائٹر تو پھر وہی خاتون بنے گی نا جو روز, مطلب ہر مہینے وہ تقریباً 30 صفحات لکھ کے بھیج رہی تھی. اب آپ نے اس کو کہا تو وہ ڈیلی بھی 30 صفحے لکھ کے دینی شروع ہو گئی. یہ صرف سٹیمنے کی گیم ہے.
ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ٹی وی ڈرامہ مارکیٹ ہے اس میں بھی یہ رجحان ہے کہ بہت ڈھیر سارے لکھاری کام کر رہے ہیں, اور ابھی ان کا ایک ڈرامہ ختم نہیں ہوتا تو ان کے اگلے ڈرامے کا پرومو چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کسی رائٹر کے لیے اتنا زیادہ لکھنا اور معیار کو قائم رکھنا, کیا بیک وقت وہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے؟
یہ ممکن نہیں ہے مدیحہ. آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اپنی طرف, مجھ میں بہت انرجی ہے لکھنے کی, اور میں اسی لیے شاید اس طرف آئی کیونکہ مجھے جو ادبی رسائل کے ٹوٹل صفحے مجھے 15 یا 20 سال کے الاٹ ہو جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں مل پائیں گے. تو میں جو لکھنا چاہتی تھی اس کے لیے میں یہاں آئی, اور اتنی انرجی کے باوجود میں سال کے 2 پلیز سے اوپر نہیں لکھ پائی, جس میں میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک دن میں 18 گھنٹے تک کام کر لیتی ہوں. اس کی ریزن یہ کہ جب آپ ایک ایپیسوڈ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے آپ کو وین آف کرنا پڑتا ہے, اپنا دماغ خالی کرنا پڑتا ہے, وہ چیزیں آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں, آپ کو ڈیمیج کرنے لگتی ہیں. تو اس چیز کو اگر آپ اتنا محسوس نہیں کرتے تو آپ اس کو دل سے نہیں لکھ پاتے. جب آپ یہ سوچ کے لکھتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ لکھ کے دینا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ پہ تو فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ جو بے شمار لکھا جا رہا ہے, اچھا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ساتھ ایسوسیٹ بھی لگا رکھے ہیں, کیونکہ اتنا تو کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے سال کے 8 یا 6 یا 7 ڈرامے لکھ لینا اگر وہ 24 گھنٹے بھی کام کرے. لیکن پھر بھی جو 3-3 4-4 ڈرامے بھی سال کے لکھ رہے ہیں, ایک تو ماشاءاللہ سٹیمنا ان میں بہت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ کسی نہ کسی جگہ, ظاہر ہے کہ اتنا لکھنے میں کسی نہ کسی جگہ سٹینڈرڈ ان کے ہاتھ سے نکل جائے.
اچھا آپ کے بارے میں بات کرتی ہوں, آپ کا لکھنے کا انداز شروع سے ہی بہت مختلف لگا ہے, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی تحریروں کو بعض اوقات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, ایک یہ ہمیشہ آپ کے بارے میں بات کی جاتی رہی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ کو خود بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی تحریر ایک عام بندے کے لیے سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے؟
بالکل مدیحہ, یہ بات مجھے کافی لوگوں نے کہی. ابلاغ کا مسئلہ اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم دو مختلف اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ اس طرح سے ایون پاکستان میں بھی نہیں بولی سمجھی جا رہی جس طرح سے کہ وہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بہت سی تلمیحات, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں تو سمجھتی ہوں کہ روزمرہ میں تھیں, لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزمرہ سے غائب ہو چکی ہیں. تو وہ چیزیں جب میں لکھ دیتی ہوں تو کئی دفعہ پڑھنے والا جو ہے وہ شاید میں اور میرا پڑھنے والا اس سطح پہ نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ میں جو جن اصطلاحات میں گفتگو کر رہی ہوں وہ اس کے لیے اجنبی ہوں. یہ اب کیوں ہے سلسلہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, لیکن یہ بات میں مانتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, چند لوگ ایسے ہیں, چند قاری ایسے ہیں کہ جو جو میں لکھتی ہوں وہ اس سے زیادہ خوبصورتی سے اس کو گراسپ کرتے ہیں جتنی مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ میں اتنا, کیونکہ میں ظاہر ہے سارا تو میں بھی نہیں چاہتی ایک ادیب کے اندر یا میرے اندر کم سے کم یہ چیز ہے کہ میں کہوں گی کہ جی 80% تو سمجھ میں آ جائے, 20% ایک راز کے طور پہ بیچ میں نہا ہی رہے جو شاید بعد میں کوئی سمجھے.
صحیح.
تو وہ جس طرح سے گانے والے کرتے ہیں نا کہ وہ مشکل سر لگاتے ہیں بیچ میں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا ایک سر ایسا لگایا ہے کہ اس پہ ہمیں داد ملے گی, تو وہ شاید میرے اندر کی وہ خواہش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے داد ملے اس مشکل سر کے لگانے پہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پکے رات کا ٹائم ہے 11 بجے کا ٹائم جیسے ہم وہ دے دیا کرتے تھے اچھے گانے والوں کو, تو وہ شاید میں بھی اسی کیٹیگری میں جانی شروع ہو گئی ہوں.
یہ بتائیں کہ آپ کہانیاں لکھتے لکھتے آپ ڈرامہ نگاری کی طرف پھر کس طرح سے آپ کا رجحان ہو گیا اور آپ نے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے؟
میں نے مدیحہ سٹارٹ میں نے شاعری سے ہی کیا تھا, شاعری کے بعد میں نے افسانے لکھے, افسانوں کے بعد میں ناولس لکھے. دو ناول جب میرے آ گئے, دوسرا ناول جب آیا ہے تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ناول کو اس طرح سے لوگوں تک نہیں وہ پہنچ پایا, اس کے بہت ساری ریزنز تھیں. یہی ریزنز تھیں کہ اگر وہ ڈائجسٹ میں پرنٹ ہوتا تو پھر تو وہ پہنچ جاتا تمام لوگوں تک, وہ جب ڈائجسٹ میں پرنٹ نہیں ہوا تو وہ جو اوپر اوپر کے ایک خاص ادبی رسائل کے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ تو بہت ایک ہینڈ فل ہے, وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کی بات سنیں اور سمجھیں. تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس وقت پہ جو ٹرینڈ ہے وہ پرنٹ میڈیا سے, جیسے داستان گوئی سے جب پرنٹ آیا ہے تو لوگ بائی ورڈ آف ماؤتھ وہ کہانی کرنے کے بجائے یا داستان گوئی کے بجائے پرنٹنگ نے اس چیز کو دبا لیا, داستان گوئی ایکسٹینٹ ہو گئی. اس طرح مجھے یوں لگا کہ اب الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو اسی طرح ڈراموں کو دیکھا اور سراہا اور پسند کیا جا رہا ہے جیسے کبھی کسی زمانے میں کتابوں کو کیا جاتا تھا, لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے تھے لوگ اور سنبھال کے رکھتے تھے, اس کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی تھیں. تو میں نے اس لیے پھر ڈرامے کی طرف میرا ہوا کہ جب میں جو کردار بناتی ہوں جو کچھ لکھتی ہوں بیسک مقصد تو اس کا ابلاغ ہے کہ لوگ اس کو سنیں دیکھیں سمجھیں, یا اس میں اگر میں کوئی نئی بات بتانا چاہتی ہوں تو وہ بات ان تک پہنچے. تو وہ ترسیل کی بیسیکلی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں ڈراموں کی طرف آئی. حالانکہ لکھنا جو ہے اس میں تو قاری کا اور ادیب کا رشتہ زیادہ قریب کا ہوتا ہے, اس میں تو بہت سارے انٹرمیڈیٹری سٹیجز اور سب سٹیجز آتی ہیں جس میں لکھا ہوا بہت سارا ضائع بھی ہو جاتا ہے. ڈرامے میں جو آپ لکھتے ہیں وہ سارا کچھ سامنے نہیں آ پاتا, لیکن صرف اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور ایک نیا میڈیم بھی ہے جو اس وقت مطلب پوری دنیا میں جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو اردو رسم الخط پڑھنا آتا ہو, اگر ان کو اردو زبان بھی سمجھ میں آتی ہے تو آپ اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتے.
بالکل درست. آپ کے ڈرامے کی طرف دوبارہ آتی ہوں, الو برائے فروخ نہیں, بہت مختلف سا نام ہے, تو اس ڈرامے کا یہ نام رکھنے کا خیال کیوں آیا آپ کو؟
یہ مدیحہ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ رہی ہے کہ جو وزڈم فوک وزڈم ہے نا وہ مطلب سلطنتیں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن جو زمین سے پھوٹنے والی ایک خاص قسم کی سوچ, ایک خاص قسم کی کسی خطے میں رہنے پہ ایک جو ذہن بن جاتا ہے نا, اس کو نہ تو آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں نہ ڈرا سکتے ہیں, اس سے آپ کسی کو الگ نہیں کر سکتے. جو چیز ایک خطے کے خاص لوگوں میں چیز ایک ہوتی ہے اسے آپ الگ نہیں کر سکتے. جس طرح سے یہی پلے جو ہے اس کا نام لکھنے رکھنے کی ریزن بھی یہی تھی کہ آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں نا, کچھ بھی کر لیتے ہیں, جو فوک وزڈم ہے وہ آپ کبھی بھی بائے نہیں کر سکتے, کسی بھی طرح آپ اس کو بائے نہیں کر سکتے. اور الو تو بہت ساری چیزوں کا سمبل آ جاتا ہے, ویرانوں کا اور جادو کا اور عقل مندی کا. میں نے اس کو یہاں پہ ٹریٹ کیا ایز فوک وزڈم یا وزڈم, تو وہ وزڈم لیکن میں نے اس میں ایک مزید چیز ایڈ اپ کر دی فوک وزڈم, کہ اب وہاں پہ وہ ایک حملہ آور نسل ہے جو رہ رہی ہے, اور ہوتے 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 وہ جاٹ نسل کے لوگ جو ہیں وہ ایک پرانی ایک بہت بڑا خاندان بن چکا ہے, لیکن وہ خاندان اپنے آپ کو خود ہی ختم کر رہا ہے, لیکن وہ سب کچھ اس نے کر لیا, لیکن اس علاقے کی جو ایک فوک وزڈم تھی نا, جو عناصر ہیں وہ چپکے 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 اپنے کام میں لگے رہے, اور وہ ان کو فتح تو اس نے کر لیا لیکن ان دا اینڈ وہ ان کو خود بھی ختم ہو گئے, وہ سرزمین پہ آ کے خود ختم ہو گئے, کیونکہ چپکے چپکے کوئی چیز ان کے خلاف عناصر کی طرح وہاں کی جو فوک وزڈم تھی وہ ان کے خلاف چلتی تھی, جیسے دھوپ بارش हवाएं, ये चीजें बड़ी बड़ी इमारतों को भी गला देती हैं जो कि उस लैंडस्केप को इन्वेड कर रही होती हैं। उसी तरह बड़े बड़े खानदानों को भी जो लोकल्स होते हैं वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो भी अनासिर के साथ ही एक चीज है, वो एक अनासिर की तरह की ही एक चीज है।
क्या उम्मीद रखें हम आमना आपसे मुस्तकबिल में, आप कितना एक काम करना चाहती हैं और क्या इसी तरह की मुनफरिद मौसुआत हमारे लिए लेकर आएंगी?
बिल्कुल मदीहा, मेरी ख्वाहिश तो यही है, अगर अगर लोग भी विलिंग है काम करने के लिए, अगर चैनल्स पे हमारे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग देखना चाहते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि और बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमारी जमीन से भी उठे हैं, इवन हमारी अर्बन लाइफ में भी बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको हम जरा मुख्तलिफ तरीके से, फनकाराना तरीके से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरीज के बजाय। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं लिखूं, और लेकिन अभी इस साल मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया और ना अगले सालों में मुझे आने की उम्मीद है। मेरी तो अपनी स्टोरीज तो हैं जो मैंने ऑफर भी की लोगों को कि मैं इनको ड्रामेटाइज करूंगी, लेकिन यही फरमाइश मुझे आ रही है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ मजेदार सा लिखे ना, कुछ जहेज टाइप की कोई चीज लिखे ना, कोई मेरी समधन टाइप चीज लिखे, तो वो अभी अभी तो मेरी समधन और जहेज ही चलेगा।
ये जो भी आपने बात की कि ये समधन और इस किस्म के मौजूद, आप खुद भी नोट किया होगा आपने कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आजकल ये होता है कि एक ट्रेंड चल पड़ता है, अब बहनों की कहानी है तो बहनों की कहानी चल रही है। कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ एक मौजू को पकड़ के और उनकी हर कहानी, गो के वो बहुत मशहूर हो जाती है, लेकिन वो बेसिकली एक ही मौजू के गिर्द, एक ही चीज के गिर्द किरदार बदल जाते हैं, थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ हो जाती है। आपको लगता है ये ट्रेंड ठीक है?
ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, ये बहुत खराब है। अदीबों को मैं, बहुत सारे अदीबों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, अदीहा ये रॉ मटेरियल था और इसको हम ट्रेन कर सकते थे इनटू वेरी 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 फाइन राइटर्स अगर इनको मौका दिया जाता। इनको, ये खुद नहीं लिखते, इनको बुला के एक स्टोरी लाइन दी जाती है और कहा जाता है ये दो फिल्में और ये एक ड्रामा है, इनको मिक्स करें और आप यूं 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 ऐसे बना दें, एक ट्रैक इधर से डालें, एक ट्रैक उधर से डालें, एक ट्रैक उधर से डालें। ये वही प्रोड्यूसर्स, ये वही डायरेक्टर्स जो बैठ के सारा मलबा बाद में बेचारी इन अदीबाओं पर डाल देते हैं, क्योंकि इनके कोई, ये घरों से बाहर निकल के किसी हलकों में नहीं जाती, कोई नकाद इनके जानने वाले नहीं हैं या कहीं पे भी, ये सिर्फ घर के अंदर बैठी हुई है, तो इनको जिस तरह से वो चिकन काटने वाली, साड़ियां काटने वाली खवातीन मिल जाती थी ना, वैसे ये मेहनती अफसाना निगार और नॉवलिस्ट जो डाइजेस्टो में लिखने वाली खवातीन थी, स्टेमिना बहुत है इनमें, इनको वो मेहनती पाकिस्तानी खवातीन मिल गई हैं और ऊपर ही अपने ब्रांड नेम लगा लगा के ठकाठक उनको बेचे जा रहे हैं, ये सारी स्टोरी लाइन हमारे प्रोड्यूसर।
लेकिन लेकिन आमना, इनमें कुछ नाम बड़े मशहूर हैं और बड़े मुस्तनद समझे जाते हैं,
उनको भी स्टोरी लाइन दी जाती है, सिवाय ये कि कुछ नॉवेल्स उनके थे जो के चले हैं, कुछ लोग, दो या तीन लोग ऐसे हैं कि जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, लेकिन उनको भी जब डिमांड ये आती है ना कि ये एक हेफ्टी चेक है और आपको इस लाइन पे लिखना है जैसा आपका वो प्ले था उससे मिलता जुलता, तो वो कहते हैं ठीक है। मैंने खुद जब जहेज लिखा तो मैंने उसको जिद में लिखा कि मुझे ही कहा जाता आप कमर्शियल नहीं लिख सकती, मैंने कहा भाई कमर्शियल लिखना कोई मसला नहीं होता, वो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे, मैं उसको लिखूंगी तो मैं थोड़े डिफरेंट टेस्ट से लिखूंगी। अब मेरे पास जो शख्स आता है वो कहता है आप जहेज की तरह से कोई चीज लिखते हैं ना भाई, जहेज लिखा गया, खत्म हो गया, मैं दोबारा वो चीज नहीं लिख सकती। तो वो भी ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही आपको फोर्स करते हैं, और होता यह कि जब आप लिखना शुरू कर देते हैं और एक पूरे प्लान में शामिल हो जाते हैं फिर आप कलम छोड़ के नहीं बैठ सकते, और अगर कलम छोड़ के बैठ जाएंगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, फिर जब काम नहीं मिल रहा और हमारे पास एनर्जी भी है, स्टेमिना भी है, कोई और काम हम कर भी नहीं रहे, तो आखिरकार हम सोचते हैं कि चलो भाई कोई नहीं, एक प्ले ये भी लिख ही देते हैं जहाँ इतने सारे और लोगों का एक हुजूम चल रहा है ड्रामों का, उसमें एक ड्रामा ये भी चल जाएगा।
सही, तो क्या इसकी एक वजह ये है कि जो हमारे डाइजेस्टो में ज्यादा खवातीन लिखती हैं और जैसा आपने अभी खुद भी पहले कहा कि उनका बहुत ज्यादा, जिस तरह अदबी मुजल्ले हैं या पाकिस्तान में अभी भी खैर अदबी महफिलें होती हैं जिसमें आप जाएं, आप नकादों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो क्या अब हम अदब की तरह काम ही नहीं कर रहे, क्या हम सिर्फ अब हमने काम को कमर्शियल कर दिया है, ये एक मसला है?
ये बात भी है, अदब की तरफ काम इसलिए नहीं हो रहा, मैं आपको उसकी रीजन बेसिक भी बताऊं। ये जितनी खवातीन हैं, ये जितनी भी खवातीन लिखने वाली हैं सभी को मैं जानती हूँ, इनमें से कोई भी खातून ऐसी नहीं है कि जिनकी कोई कहानी कभी किसी नकाद के सामने या एक ऐसे ग्रुप के सामने पेश हुई हो जिसने तनकीद की हो और उनको उनकी फनी महासिन जो हैं वो खोल के बयान किए गए हों या उनकी बुराइयां उनके मुंह पे बैठ के बयान की गई हों, ये लोग इसको पर्सनल ले लेते हैं। तो इनकी तरबियत नहीं हुई भी। मैंने आपको फिर कहा ना कि ये रॉ मटेरियल।
आखिर में आमना हमें थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा, आपकी तालीम के बारे में, अपने खानदान के बारे में।
मैंने मदीहा मैथ कम्युनिकेशन में, जिसे कि हमारे दौर में तो वो सहाफत हुआ करता था, तो सहाफत में मैंने मास्टर्स किया है। बीए में मेरे पास अंग्रेजी अदब और सहाफत, उससे पहले मैंने एफएससी की थी, और स्कूल मेरा डिविजनल पब्लिक स्कूल था, लेकिन बेसिक तालीम मेरी पाकपतन की है। मेरा ताल्लुक पाकपतन के एक जिम्मेदार छोटे मोटे काश्तकार घराने से है, और लेकिन तालीम सारी मैंने लाहौर में हासिल की। स्टार्ट में 8 साल मैंने पाकपतन में पढ़ा, और हमारे ख़ानदान में यह है कि क्योंकि दादी मेरी दिल्ली की थी, सास भी मेरी दिल्ली की हैं, तो जबान थोड़ी सी साफ थी, और ये था कि घर में लिखने पढ़ने का रुझान था, अच्छा टेस्ट था, बैतबाजी होती थी, अच्छी किताबें पढ़ी जाती थी, और अब्बू के मामू और जो हमारे अब्बा का ननियाल था वो फारसी अरबी से अच्छी शुद्ध बुद्ध थी, अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छी बातें करते थे, तो उनकी सोहबत में थोड़ा सा अदब की तरफ एक टेस्ट शुरू से डेवलप होता चला गया, और फिर वो लिखने को भी अप्रिशिएट किया गया, लिखने को अच्छा समझा गया, तो फिर ये लिखने का सिलसिला जो है ये शुरू हो गया।
तो आपको लगता है आप अपना ये वर्षा जो है अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करेंगी?
मेरी बहुत कोशिश है इंशाल्लाह, अगर मेरे बच्चे उर्दू पढ़ने में कामयाब हो गए, मेरी तो बहुत ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि मैं उनको उर्दू पढ़ाऊं, लेकिन गैर स्कूलों वगैरह में उस तरह उर्दू पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो अगर उर्दू पढ़ पाए तो यकीनन। मेरे दोनों बेटे लिखते हैं, लेकिन वो दोनों बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से दोनों अंग्रेजी में लिखते हैं, अभी तो छोटे हैं, लेकिन दोनों अपने कॉलेज स्कूल में जो भी उनके होते हैं स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, तो फर्स्ट सेकंड प्राइज ऑल ओवर द स्कूल उन्हीं को मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो और मैं दो मुख्तलिफ जबानों में लिखते हैं, उनको मेरी जबान समझ नहीं आती, मुझे उनकी जबान समझ नहीं आती, हालांकि रहते इसी पाकिस्तान में है जिसकी बुनियाद उर्दू पे ही रखी गई थी।
जी आमना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की।
बहुत शुक्रिया मदीहा।